ओम शांति। हम व्यक्तवाणी 23 अप्रैल 1977। नेचुरल नेचर ब्राह्मणों की सदा सर्व प्राप्ति की है, अर्थात ब्राह्मणों के आदि अनादि संस्कार विजय के है, अर्थात संपन्न बनने के है। पश्चाताप के संस्कार ब्राह्मणों के नहीं है, यह क्षत्रियपन के संस्कार है, चंद्रवंश के संस्कार है। सूर्यवंशी सदा सर्व प्राप्ति संपन्न स्वरूप है। सूर्यवंशियों को भगवान भगवती कहा जाता है, क्योंकि आज की मुरली सूर्यवंशी को भगवान भगवती कहा जाता है क्योंकि वो संपूर्ण है। चंद्रवंशी बार बार अपने आप में व बाप से इन शब्दों में पश्चाताप करते हैं। कौन से शब्दों में? ऐसा सोचना नहीं चाहिए था, ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, करना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया। अब से नहीं करेंगे। कितनी बार सोचते व करते हो, यह भी रॉयल रूप का पश्चाताप ही है। समझा? कौन से संस्कार है? सूर्यवंशी के व चंद्रवंशी के। बहुत समय के संस्कार समय पर धोखा देते थे, तो पहले स्वयं को स्वयं के धोखे से बचाओ। किसके धोखे से बचाओ? स्वयं को स्वयं के धोखे से बचाओ। तो समय के धोखे से बच जाएंगे, तो माया के अनेक प्रकार के धोखों से बच जाओगे, तो दुख के अंश मात्र के महसूसता से सदा बच जाएंगे। लेकिन सर्व का आधार, समय को व्यर्थ नहीं गवाओ, हर सेकंड का लाभ उठाओ। समय के वरदानों को स्वयं प्रति और सर्व के प्रति कार्य में लगाओ। तो व्यक्तवाणी है 77 की। क्या सुना? नेचुरल नेचर ब्राह्मणों की कौन सी है? सदा सर्व प्राप्ति की है, अर्थात ब्राह्मणों के आदि अनादि संस्कार विजय के है, अर्थात संपन्न बनने के है। नेचुरल नेचर सहज स्वभाव ब्राह्मणों का कौन सा है? मुझ आत्मा का सहज नेचुरल कुदरती स्वाभाविक प्राकृतिक स्वभाव कौन सा है? शांत चित्त। शांत रहना मेरा स्वभाव है, प्राप्ति स्वरूप मेरा स्वभाव है, संपूर्ण पवित्रता नेचुरल स्वभाव है। और ब्राह्मणों का नेचुरल संस्कार कौन सा है? हर्षित मुक्ता नेचुरल स्वभाव है। और स्नेह प्रेम स्वरूप रहना नेचुरल स्वभाव है, संतुष्टता नेचुरल स्वभाव है। और नम्रता। वास्तव में पांच विकार, किसी चीज का अभाव है। पांच विकार अंधकार है, प्रकाश का अभाव है। पवित्रता है नहीं, इसीलिए काम है। यदि पवित्रता आ जाए तो काम विलीन हो जाए। शांत स्वरूप हम है नहीं, इसलिए क्रोध है। संतुष्टता है नहीं, इसलिए लोभ है। परमात्म प्रेम कम है, इसलिए लगाव है, और समान है नहीं इसलिए अहंकार है। अंधकार को भगाने का पुरुषार्थ नहीं, प्रकाश को लाने का पुरुषार्थ। कैसे हटाओगे इस अंधकार को, कितनी लड़ाई करेंगे, फिर जाएगा नहीं वो। किसी एक कमरे में 1000 वर्ष से अंधकार है, कैसे हटाएंगे? सेना से युद्ध करेंगे। और जहां पर अंधकार है वहां क्या होता है? भूत प्रेत, डर, जंजाल, डरावने पशु पक्षी, तो भय रहता है, तो प्रकाश को लाना है। प्यूरिटी आ जाए तो स्वतः काम विलीन हो जाए, संतुष्टता आ जाए तो जो बाहर की दौड़ है वो कम हो जाए। काम अंदर करना है, बाहर अपने आप ठीक हो जाएगा। तो आत्मा का सहज स्वभाव है संतुष्टता और आनंद। मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूं। निवृत्ति मार्ग में वो लोग कहते हैं, मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूं। शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, मुक्त हूं। शुद्ध बुद्ध अर्थात जिसे बोध है, जो ज्ञान है, मुक्त हूं, निर्लेप हूं। निवृत्ति मार्ग में ये सारे कहा जाता है। यहां का कुछ मुझे स्पर्श नहीं करता है, ये सुख, ये दुख, ये अपमान, ये स्तुति, मैं इन सब से अलग हूं। शंकराचार्य का विवेक चूड़ामणि ग्रंथ है, उसमें सारी यही चर्चा है। कौन मां, कौन बाप, कौन पिता, कौन किसका, मुझे कोई कर्म स्पर्श ही नहीं करते। कर्म कर रहा हूं परंतु अस्पर्शित, इंटैक्ट हूं। सब कुछ कर रहा हूं परंतु न कर्म न कर्म का प्रभाव मुझे स्पर्श कर रहा है। तो आनंद आत्मा का सहज स्वभाव है और प्रेम बोल दिया और सत्यता और शांति बोल दिया और आत्मा का सहज स्वभाव कौन सा है? बोल दिया, प्रेम बोल दिया, खुश रहना बोल दिया और धैर्य था। और स्वभाव, शक्ति अलग चीज है, स्वभाव, नेचर, शीतलता, शीतलता। और जिसमें स्थित होते ही उसे बहुत आनंदित अनुभव होता है, अंतर्मुखता, मौन, लाइट, लाइट स्वरूप में स्थित रहना, स्वतंत्रता। भेड़िया उसे पसंद नहीं है, उसका स्वभाव ही नहीं है, इसलिए दुखी हो जाती है। आज कहा ना, दुख ही दुख, मातम ही मातम, दर्द ही दर्द, ये संसार की स्थिति है। तो बाबा कह रहे, आत्मा का सहज स्वभाव है सर्व प्राप्ति स्वरूप। आत्मा का सर्व सहज स्वभाव कौन सा है? सदा प्राप्ति स्वरूप का, संपन्नता, भरपूरता, रिचनेस। देना आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का सहज स्वभाव है दातेपन का, दातापन का। आत्मा का सहज स्वभाव है रहम दिल का। अर्थात ब्राह्मणों के आदि अनादि संस्कार विजय के है, सफलता का है। संडे की मुरली विजय का बैच, सफलता का बैच, विजय का तिलक और स्नेह के पुष्प गुलदस्ता बाप दादा ने दिया। पश्चाताप के संस्कार ब्राह्मणों के संस्कार नहीं, यह क्षत्रिय के संस्कार है, चंद्रवंशी के संस्कार है, सूर्यवंशी सदा सर्व प्राप्ति संपन्न है। कोई एक कौन सी वो मुरली थी जिसमें सूर्यवंशी आत्माएं और चंद्रवंशी आत्माओं के लक्षण थे? हमें याद नहीं है। एक मुरली थी ऐसी पूरी जिसमें चंद्रवंशी आत्माओं के सारे लक्षण और सूर्यवंशी आत्माओं के सारे लक्षण थे। ढूंढना उसको। चंद्रवंशी बार बार अपने आप में माँ बाप से इन शब्दों में पश्चाताप करते हैं। सोचना नहीं चाहिए था सोच लिया, बोलना नहीं चाहिए था बोल लिया, करना नहीं चाहिए था कर लिया, अब से नहीं करेंगे। कितनी बार सोचते हो कहते हो यह भी रॉयल रूप का क्या है? पश्चाताप। समझा कौन से संस्कार है, सूर्यवंशी के है या चंद्रवंशी के है? बहुत समय के संस्कार क्या करेंगे, समय पर धोखा देंगे, क्योंकि संस्कार अवचेतन मन की बाउंड्री में है। संस्कार अवचेतन मन का साम्राज्य है, चेतन मन का नहीं, क्योंकि अंदर गहरे चले गए, अपने आप स्वतः काम करते, स्वयंभू है, ऑटोमेटिक। आदत और संस्कार आदतों से भी गहरे है, जबकि आदत ही हमें अपने आप विवश करती है सब कुछ करने में, तो संस्कार तो उससे भी गहरे है, अपने आप होते रहता है सब कुछ। बहुत समय के संस्कार क्या करेंगे, समय पर धोखा दे देंगे। तो पहले स्वयं को स्वयं के धोखे से बचाओ। कौन से धोखे से बचाना है? स्वयं को स्वयं के धोखे से, अर्थात सेल्फ डिसेप्शन, अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ डिसेप्शन, हिंदी में कहते हैं आत्मवंचना, आत्म प्रवंचना, स्वयं स्वयं को धोखा देना, स्वयं स्वयं को ठगना, स्वयं स्वयं के साथ चीटिंग करना, सेल्फ चीटिंग, अपोजिट ऑफ सेल्फ ऑनेस्टी। एक है सेल्फ ऑनेस्टी, एक है सेल्फ चीटिंग, एक है सेल्फ डिसेप्शन, एक है सेल्फ लाइंग, खुद ही को धोखा देना, खुद से ही झूठ बोलना। तो बाबा कह रहे हैं स्वयं को क्या करो, स्वयं के धोखे से बचाओ। तो क्या हो जाएगा, माया के अनेक प्रकार के धोखों से बच जाएंगे। माया के धोखे तो बाद में, पहले स्वयं के संस्कार ही धोखा दे रहे, समय के धोखे से बच जाएंगे। और तीसरा, दुख के अंश मात्र के महसूसता से सदा बच जाएंगे। इसलिए सर्व का आधार है क्या करो, समय को व्यर्थ नहीं गवाओ, हर सेकंड का लाभ उठाओ समय के वरदानों को, स्वयं प्रति और सर्व प्रति कार्य में लगाओ। तो यहां पर बाबा ने दो तीन बातें बोली है। सबसे पहले तो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार क्या है ये बात, और दूसरी बात स्वयं स्वयं को धोखा कैसे देती है आत्मा। तो आज हम चर्चा करेंगे सेल्फ डिसेप्शन पर, सेल्फ चीटिंग पर, सेल्फ लाइंग, सेल्फ हिपोक्रेसी, आडंबर, ढोंग, आत्मवंचना, आत्म प्रवंचना, किस किस ढंग से आत्मा स्वयं को धोखा देती है। बाबा कह रहे आत्मा को स्वयं को स्वयं के धोखे से बचाओ। हम स्वयं अपने आप को कैसे धोखा देते? एक है हम किसी और को धोखा दे तो सरकार पकड़ लेगी, मुकदमा चलेगा, पर यदि मैं अपने आप को धोखा दूं तो कौन पकड़ेगा मुझे? कौन मुकदमा चलाएगा मुझ पर, क्योंकि जिसको मैं धोखा दे रहा हूं वो मैं खुद ही हूं। यदि मैं किसी के साथ धोखाधड़ी करूं तो सरकार मुझे पकड़ लेगी, चीटिंग करेगी, तुमने इसके पैसे हड़प लिए। पर यहां मैं अपने आप से धोखा कर रहा हूं, तो कौन देख रहा है, कौन पकड़ेगा और कौन सी सजा है, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। तो ब्राह्मण आत्मा, बाहर की आत्माओं का छोड़ो, एक महान आत्मा, एक ब्राह्मण आत्मा, वो स्वयं को कैसे धोखा देती है। संडे की मुरली में था ना, चक्र में आ जाते हैं पाप के, माया के चक्र में आते हैं, फिर गलती करते हैं, फिर पश्चाताप करते हैं, फिर चिल्लाते बाबा ये हो गया, बाबा तीन बार माफ करते हैं, तीन चांस देते हैं, गलती को अब सुधारो, स्मृति स्वरूप बनो, अब जागृति आई है, बीती सो बीती करो, नया उत्साह, नया उमंग, नया जीवन का अनुभव करो। संडे की मुरली में था ये सब कुछ। तो प्रश्न है, आत्मा आत्मा को कैसे धोखा देती है, हम स्वयं स्वयं को कैसे ठगते हैं, क्या करते हैं? और हम स्वयं को स्वयं कैसे धोखा देते हैं? जैसे मैं दूसरों को, किसी को धोखा दूं, किसी ने मुझ पर विश्वास किया और ऐन वक्त पर मैं फरार हो जाऊं उसके पैसे लेकर, धोखा दे दिया, बिजनेस पार्टनर को धोखा देते हैं। तो वैसे आत्मा स्वयं स्वयं को कैसे ठगती है? हाँ, इसके सात आठ अलग अलग ढंग से आत्मा स्वयं स्वयं को ठगती है। तो पहला बताया, वो दिखाना जो मैं हूं ही नहीं, एक मुखौटा पहन लेना, लोगों को सामने कुछ और, मैं कुछ और प्राइवेट लाइफ में कमरे में कुछ और हूं, बाहर निकलता हूं तो कुछ और हूं, पब्लिक के सामने कुछ और हूं, स्प्लिट है पर्सनैलिटी, खंडित व्यक्तित्व है, मैं दिखावा करता हूं, हूं नहीं पर दिखाता हूं कि योगी हूं, ज्ञानी हूं, श्रेष्ठ मर्यादाओं पर चलने वाला हूं, दिखावा। तो यह है स्वयं स्वयं को ठगना, ये दिखाना कि हम बहुत, हमारी बहुत पहचान है, हमको सब जानते हैं, ये डिसेप्शन है। पहला दिखावा करना, और इसमें और एक चीज आ जाती है, अतिशयोक्ति करना, अपनी अचीवमेंट्स, क्या क्या उपलब्धियां हुई, क्या क्या पाया, क्या क्या मिला, क्या क्या विशेषताएं है, वो सारों का बखान करते रहना। साइकोलॉजी में इसको कहते हैं सेल्फ एग्रेंडाइजेशन, खुद ही खुद की तारीफ करना बहुत ज्यादा, अपने आप को बड़ा चढ़ा कर बताना, वो सेल्फ डिसेप्शन है। सेवा इतनी छोटी, विस्तार इतना सारा, वर्णन इतना सारा, विवरण उसका दिन रात, एक घंटे की सेवा क्या और उसके 100 फोटो और उसी का वर्णन एक मास तक, सेल्फ डिसेप्शन है ये भी एक। तो पहला मुखौटे पहन लेना, वो दिखाना जो मैं हूं नहीं। लंदन में बहुत पहले कभी एक स्टूडियो खुला जहां पर फोटो खींची जाती थी, तो उस दुकानदार ने ऐसा लिखा वहां पर, तीन प्रकार की फोटो, पहली फोटो की कीमत 10 रुपए, दूसरे की 20 और तीसरे की 50। तो एक गांव से किसान आया, उसको क्या पता, उसको फोटो निकालनी थी, तो उसने देखा ये एक ही आदमी की तीन अलग अलग फोटो निकालेंगे आप? उसने कहा है एक ही, पहला है 10 रुपए वाली, दूसरा 20 और फिर 50 वाली, कौन सी निकालनी है? वो कहता आखिर इसमें अंतर क्या है? वो कहता है पहली जो है, तीसरी जो फोटो है 50 वाली, वो फोटो निकलेगी जैसा तुम चाहते हो कि दूसरे मुझे देखे, वो फोटो है, उसके लिए कीमत उसकी सबसे ज्यादा है। जो तुम दिखाना चाहते हो दूसरों के सामने वही दिखेगा उसमें, उस फोटो में। दूसरी जो फोटो है, उस फोटो में जो तुम स्वयं के बारे में सोचते हो तुम हो, वो दिखेगा। और तीसरी वो 10 रुपए वाली जो तुम हो, वो तो कोई लेता ही नहीं, सब लोग तीसरे नंबर की फोटो खरीदते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं। तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ शो ऑफ, दिखावा करना चाहता है, परंतु वो स्वयं स्वयं को धोखा देना है। ये हो गया दूसरा। तीसरा है इसमें, हम स्वयं स्वयं को तब धोखा देते हैं जब हम हाजी कहते हैं और हमको अंदर से नाजी कहना है, जब हम यस कहते हैं। क्योंकि हाजी ये इस यज्ञ का बहुत ही प्रसिद्ध वेल सेलिब्रेटेड श्रीमत, जिसकी बहुत महिमा है, हाजी हाजी कहना हमको बचपन से सिखाया जाता है। पर अब ऐसा कभी कभी होता है कि हम कहना नहीं चाहते हाजी, हमारी इच्छा ही नहीं है उसमें, फिर भी लोक अपवाद, ब्राह्मण समाज का थोड़ा डर भय, और उसके वजह से हम हाजी कहते हैं और फंस जाते हैं और अंदर द्वंद चालू हो जाता है। हाजी तो कह दिया पर अब करना नहीं चाहते। और इसमें बड़े खतरे भी है, जैसे किसी बहन जी ने किसी कुमार को सेवा दे दी और उसकी इच्छा ही नहीं है, फिर भी जबरदस्ती उसने हाजी तो कह दिया और बाद में की ही नहीं और काम हुआ ही नहीं टाइम पर। अगर किसी को पहले ना कर दिया होता तो किसी दूसरे को दे दी होती सेवा, किसी दूसरा कर दिया होता। हाँ, क्योंकि हमारे यहां कई कारण हो सकते, जरूरी नहीं कि हम आलसी और अलबेले ही है हर बार, हमारे अपने दूसरे काम है और जिसमें हमको ये काम करने के लिए टाइम ही नहीं। सीधा नाजी, एक पांडव भवन में इस पर भी कभी क्लास हुई थी, हाजी कब करना है और नाजी कब करना है। हाजी तो पता है पर नाजी का क्या महत्व है। तो जब हम हां कह देते और जब हमको अंदर से ना आए, और ना हम किसी उनको संतुष्ट कर सकते ना अपने आप को संतुष्ट कर सकते, परिणाम असफलता, परिणाम सेवा भी नहीं हुई, हम भी असंतुष्ट, वो हमसे असंतुष्ट। हमको काम दिया गया 4 ही दिन है और कहा गया 4 दिन में होना चाहिए और हमने किया ही नहीं, हां तो बोल दिया था और वो हम पर विश्वास करते बैठे कि ये करेगा, और फिर हमने एन मौके पर कोई बहाना बना दिया कि ये नहीं होगा, तो ये भोज हो गया ना। तो जब हमको नाजी कहना है और फिर भी जबरदस्ती क्या कह देते हैं, हाँ जी, तो ये भी क्या है, आत्मवंचना, सेल्फ डिसेप्शन। तो ये तीसरा प्रकार आत्मवंचना का, सेल्फ डिसेप्शन का। चौथा, जब इसको कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म, कौन कौन से हमारे डिफेंस, अर्थात हम अपने आप को किस तरह से बचाते हैं। अलग अलग प्रकार के डिफेंस मैकेनिज्म होते, जब तक हम वो आइडेंटिफाई नहीं करते हम अपने आप से झूठ बोलते रहेंगे। एक है दूसरे से झूठ बोलना, एक अपने आप से, सेल्फ लाइंग। सबसे पहला उसमें है, जैसे किसी पर आरोप लगा दिया गया, वो किस तरह से रिएक्ट करता है। अचानक ब्लेम कर दिया गया किसी पर, क्या क्या करेगा वो, एक तो क्रोध, एकदम से एंगर, दूसरा जिसने आरोप लगाया उसी को ब्लेम करना चालू करेगा, ब्लेम गेम, तीसरा और क्या करेगा। जब आरोप लगा दिया जाता है अचानक, व्यक्ति कैसे बचाता है अपनों को, डिफेंस कैसे कर सकता है, नहीं तुरंत क्या करता है, जोश में आ जाता है एकदम से और सहन नहीं कर पाता कि मुझ पर ऐसा, और विवेक खो देता है, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, बहुत सारी चीजें वो करता है। तो ये आइडेंटिफाई करना कि मैं सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म कब कब यूज करता हूं और किस तरह से करता हूं। झूठ बोल देता है कोई कोई व्यक्ति उस मौके पर, उसको बोलना उसकी आदत नहीं है पर अपने आप झूठ निकल जाता है। उसने किया भी हो तो बताएगा कि मैंने नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है। झूठ तो नहीं पर कभी कभी सत्य को दबाएगा, एक सत्य को रूपांतरित परिवर्तन करेगा, मॉडिफाई करेगा या फिर अतिशयोक्ति करेगा। ये तीन चीजें व्यक्ति करता है सत्य के साथ। महात्मा गांधी ने अपनी जीवन कहानी में लिखा है कि जब मैं लंदन में था, बोलते नहीं आता था, क्या बोलूं समझ में नहीं आता था, बहुत शर्म शाय था, बड़ा शर्मीला था, परंतु उन्होंने लिखा ये जो शायनेस है मेरी शील्ड थी, मेरा कवच था। और एक वाक्य लिखा है, प्रोननेस टू एग्जैजरेट, टू सप्रेस और मॉडिफाई द ट्रूथ इज नेचुरल प्रोपेंसिटी ऑफ मैन एंड साइलेंस इज नेसेसरी टू सरमाउंट इट। मनुष्य के तीन स्वभाव है, एक तो सत्य को दबाता है, रूपांतरित करता है या बड़ा चढ़ाकर बताता है, और ये तीनों मनुष्य का स्वभाव है और इसको जीतने के लिए मौन की आवश्यकता है। और सेल्फ डिफेंस में व्यक्ति यही करता है, या तो झुटलाता है, ब्लेम करता है उसी पर, क्रोधित हो जाता है, आवेश में आ जाता है, जोश में आ जाता है, पूरी सिस्टम को हिलाने की सोचता है, अपने समर्पण और अपने जीवन के जो त्याग है उसका वर्णन करता है और दूसरों को सुनाता है हमने ये किया है। अहंकार जागृत हो जाता है सीनियोरिटी पुराने होने का और किस स्थान पर रहने का, ये सारे जो है सेल्फ डिसेप्शन में आता है। क्वेश्चनिंग करेगा, बहुत सारे प्रश्न उठाएगा, ये किसने कहा, तुमको किसने बोला, कौन है वो, कौन ऐसा वक्त कहता है मेरे विषय में, देख लूंगा वगैरह 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 वगैरह। तो इन सब को कहा जाता है, मनोविज्ञान कहता है आइडेंटिफाई योर डिफेंस मैकेनिज्म्स, मैं क्या करता हूं। क्योंकि जब हम ये अपने आप को स्टडी करेंगे, मुझे अपने आप को ही मेरे अवचेतन मन में जो छिपे हुए मैं हूं उससे मेरी पहचान होगी, क्योंकि मैं अपने आप को ही नहीं जानता। अचानक चोरी हो जाए ट्रेन में हम बैठे, तब मैं क्या करता हूं, अचानक समाचार आ जाए स्वजनों की मृत्यु, कितना वैराग रहता है और कितना त्याग रहता है और कितना स्थिरता रहती है। अचानक फोन, स्वजनों को बहुत बड़ी बीमारी, इस सब स्थितियों में जो हिल जाता है, अर्थात अभी ज्ञान परिपक्व नहीं हुआ है। तो एक है सेल्फ डिफेंस, कहां कहां करता हूं इसको आइडेंटिफाई करना, और सेल्फ डिसेप्शन हम कहां कहां करते हैं, दिखावा करना, आगे आगे करना, ये सेल्फ डिसेप्शन है। एग्जीबिशन, ये बताना कि मैं बहुत बड़ा हूं, बहुत ज्यादा मेरी पहचान है, जबकि हम अंदर से खुद जानते हैं कि अंदर से ज्ञान योग से आत्मा रिक्त है, और इसलिए तो बाहर का ये सब आडंबर है, ढोंग है। तो ये जब है तो समझना क्या हो रहा है, स्वयं स्वयं को हम धोखा दे रहे हैं, इस धोखे से स्वयं को बचाना है। क्योंकि हम किसको किसको धोखा दे रहे हैं, दुनिया को या अपने आप को। दुनिया हम ये सोचे कि किसी को क्या पता चलेगा, किसी को क्या पता चलने की बात ही नहीं है। तो ये भी एक आत्मवंचना है। और अटेंशन सीकिंग, जैसे उसमें कहा दिखावा करना, उसमें अटेंशन सीकिंग, फोटो में आना चाहिए, टीवी में आना चाहिए, बड़ों के साथ आना चाहिए, आगे पीछे आगे पीछे, चाटुकारिता, साइकोफेंसी, खुशामद करना, ताकि हमारे तरफ ज्यादा ध्यान दिया जा सके, ये सेल्फ डिसेप्शन है। धोखा दे रहे हम अपने आप को, अपने जमीर को, अपने अंतस चेतना को, अंतकरण को, क्योंकि यह हमारा स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव है मौन, आत्मा का स्वभाव है गुप्त रहना, आत्मा का स्वभाव है अंतर्मुखता की कुटिया में बैठना। अत्यधिक बोलचाल दिन भर, किसी के सामने इंप्रेशन जमाना, यह भी सेल्फ डिसेप्शन है। गलती करना और छिपाना सेल्फ डिसेप्शन है। ज्ञान की पॉइंट को अपने रीति से लेना, सुविधाजनक श्रीमत, फिलॉसॉफी ऑफ कन्वीनियंस, अपने रीति से उसको, जैसे टेररिस्ट भी गीता पढ़ता है और वो अपने अर्थ उठाता है वहां से, वो कहता है इसमें लिखा हुआ है मारो, वो अपने अर्थ उठाता है। तो उसी तरह से ज्ञान को अपने रीति से उठाना, वैसे नहीं जैसे बोला गया है, ये भी सेल्फ डिसेप्शन है। और अपनी मुंह मियां बिट्टू बोल दिया, और इतिहास की पास्ट में जो हुई है, और मैनिपुलेट करना, ट्रुथ को ट्रुथ से छेड़छाड़ करना, जैसे इतिहास की बात बताई, इतिहास में जो हुआ उसके साथ छेड़खानी करना। और एक बात, किसी आत्मा को गिराना, उसके विषय में पता कुछ नहीं है, जानकारी कोई नहीं है, परंतु निंदा करना, यह भी सेल्फ डिसेप्शन है। और क्या क्या डिवाइड एंड रूल फूट, यह भी सेल्फ डिसेप्शन है। दो आत्माओं के बीच में झगड़े लगा देना, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, यह भी सेल्फ डिसेप्शन है। अत्यधिक बाह्यमुखी स्वभाव बनकर छिद्रान्वेषण, दोषान्वेषण करना, दूसरों के दोष निकालते रहना, जैसे कि हम ही उसके सर्व सर्वा है, हम ही उसको ठीक करने वाले हैं। अंग्रेजी में कहते हैं रिजाइन एज अ जनरल मैनेजर ऑफ द यूनिवर्स। तुमको किसने जनरल मैनेजर बनाया है, इस्तीफा दे दो इस पद से। बाबा कहते हैं मैं ठेकेदार हूं, मैं एक एक को ठीक करूंगा, तुम कौन हो ठीक करने वाले, तुम अपना काम से काम रखो। ठेकेदार मैं हूं, सर्व का सदगति दाता। और हम कहां कहां डिसीव करते हैं खुद को, खुद ही को कहां डिसीव करते हैं, अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करते हैं, और स्वार्थ के वशीभूत होकर व्यवहार में आना। और हाँ, ये एक है, ये कहना कि हम तो बन जाएंगे संपन्न, मैं चेंज कर लूंगा, और पुरुषार्थ कुछ भी नहीं कर रहे, अपने आप को झूठा दिलासा देना कि ये जो है इससे मैं निकल जाऊंगा, और पुरुषार्थ नहीं कर रहे, ये विकार में जो मैं फंस गया हूं इससे निकल जाऊंगा, ये जो एडिक्शन हो गया इससे मैं निकल जाऊंगा, ये जो डिजिटल अटैचमेंट हो गया उससे मैं कभी भी डिटैच हो सकता हूं, ये भी एक आत्मवंचना है। खुद को दिलासा देना कि सब ठीक हो जाएगा, और ठीक कुछ भी नहीं हो रहा है, हुआ ही पड़ा है, कह रहे हैं ज्ञान के शब्द तो बहुत सारे रटे रटाए हैं, पर पुरुषार्थ कुछ भी नहीं चल रहा है, और सो हम अपने आप को कह रहा है कि ये सब धीरज धर मनवा, इससे तुम निकल जाओगे बाहर, अपने आप को छल रहे हैं कि ये जो मार्ग है जहां गिरना है और संभलना है, इसलिए गिरे जा रहे हैं। गिरने की छूट किसने दी? हाँ, ये कहा है कि इंसान गलतियों का पुतला है, इसका मतलब ये नहीं कि गलतियां करते जाओ, रोज गलतियां करना चालू है, रोज माफी माफीनामा, रोज पत्र लिख रहे बाबा को साफ दिल, बाबा ने कहा है बता दो तो आधा माफ, पर ये नहीं कहा है कि रोज ही पत्र लिखो और रोज गलतियां करो और रोज माफी मांगो। तीन बार बोला था ना, वो अलग चीज है, तीन बारी तो उस दिन भी पढ़ रहे थे मुरली में ना, थ्री पीस, पाप करना, पश्चाताप करना, पार्डन, माफी, इसको ब्राह्मण जीवन की रीति रसम नहीं बना देना। पाप करते जाना, पश्चाताप करते जाना, एंड पार्डन, माफी मांगते जाना, थ्री पीस, इसको रीति रसम नहीं बना देना ब्राह्मण जीवन की। और हम कहां सेल्फ डिसेप्शन करते हैं, दूसरों का फायदा उठाना और भोलेपन का फायदा उठाना और दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाना। तो बाबा कह रहे हैं पहले स्वयं को स्वयं के धोखे से बचाओ, तो क्या हो जाएगा, समय के धोखे से, माया के धोखे से और दुख से बच जाएंगे, तीन चीजें हो जाएगी। एक आत्मवंचना का प्रकार है जो कि साइकोलॉजी में काफी इसकी चर्चा होती है, वो है टनल विजन। ये समझना कि मैं जो देख रहा हूं वही राइट है, टनल होता है ना, टनल, संकुचित दृष्टि, बस इतना ही, ये जो मैं देख रहा हूं ना यही राइट है। हम दूसरों का सुनना ही नहीं चाहते कि इसको देखने का कोई दूसरा तरीका भी है, हमने जैसा समझा है सिचुएशन को बस ये ऐसा ही है, बिल्कुल कुछ बोलना मत, यही राइट है, टनल विजन जिसको कहते हैं। जैसे वो कहानी बताई है ना, वो एक मेंढक होता है एक कुएं में, और एक दिन एक समुद्र का मेंढक आ जाता है, तो चूहे, तो कुएं का मेंढक उससे पूछता है तुम कहां से आए हो, वो कहता है समुद्र से। तो कुएं वाला मेंढक पूछता है समुद्र कितना बड़ा है, वो मेंढक कहता है बहुत बड़ा है। तो ये जो मेंढक है यहां से वहां छलांग लगाता है, वो कहता है इतना, वो कहते हैं नहीं 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 इतना तो कहां, वो तो बहुत बड़ा है। तो वो कहता है और बड़ी छलांग लगाता है, इतना, वो कहता है नहीं 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 इससे तो बहुत बड़ा है, एक बहुत जोर से छलांग लगाता है यहां से वहां तक, इतना तो होगा ही, वो कहता है नहीं नहीं इससे तो कई गुना ज्यादा है, वो कहता है जाओ यही समुद्र है, मुझे मत सिखाओ। वो ये मानने को तैयार नहीं कि इससे भी बड़ा कोई समुद्र हो सकता है, कुपमंडूक, टनल विजन, संकुचित दृष्टि, ये आत्मवंचना है, आत्म प्रवंचना, सेल्फ डिसेप्शन। और एक सेल्फ डिसेप्शन का और एक प्रकार है, उस बातों की लिस्ट बनाओ जहां पर मुझे भय लगता है, वो कौन सी बातें हैं जो एकदम से डरा देती है, कौन सी बातें, स्टेज पे तो डर, डर, अच्छा हाथ पाँव का, वो स्टेज, वो तो बहुत छोटा है, वो नहीं, दूसरे भय है कौन से, कोई बदनाम कर दे, हमारी ग्लानी कर दे, हमारी निंदा करे, अपमान करे, अकेले में नहीं सबके सामने, वो भी भरी सभा में जहां हमारे चाहने वाले बहुत बैठे हैं, उनके सामने, बाकी योगी का तो अपमान हो नहीं सकता कभी, वो दूसरी बात है, योगी को कोई अपमानित नहीं कर सकता। वो दिखाया है महाभारत में, युद्ध से पहले श्री कृष्ण आते हैं उधर से शांति दूत बनकर, समाचार आता है पांडव कौरवों के पास, मीटिंग होती है उनकी, भीष्म पितामह, दुर्योधन, शकुनी और वो सब, कोर मीटिंग, इंटरनल मीटिंग, प्रिपरेशन वाली मीटिंग, कि उधर से कृष्ण आने वाले है, समाचार आ गया है। तो बीच में उसको समझाने की कोशिश करते कुछ गड़बड़ मत करना, वो कहता है अगर कृष्ण ने कुछ किया ऐसा वैसा तो मैं उसे बंदी बना दूंगा। अरे उसको बहुत समझाते, वो कौन बनकर आ रहा है, वो दूत है, दूत को कभी बंदी थोड़ी बनाया जाता है। और रही बात उनके अपमान की, तो भीष्म पितामह कहते हैं वो तो मान और अपमान से परे है, उनका अपमान तो हो ही नहीं सकता, कृष्ण का कौन अपमान करेगा, वो तो मान अपमान से परे है, तो योगी का भी कोई अपमान नहीं कर सकता, और ना ही हम किसी से प्रभावित होंगे, ना ही किसी की स्तुति से, प्रशंसा से, और ना ही किसी के अपमान से, अपनी घोट तो नशा चढ़ेगा, हम तो स्वयं के नशे में हैं। तो ये भी भय, अपमान का भय, निंदा का भय, ग्लानी का भय और सूक्ष्म भय. ये तो बहुत सूक्ष्म भय कि कहीं मेरे अपने पुराने विकारी संस्कार इमर्ज हो गए तो मेरी ये जो पावरफुल स्थिति है ये तो गई, क्योंकि वो मुझे पता है, उसकी पहचान है, दोस्ती पुरानी है. क्योंकि वो जब आता है तो कुछ भी नहीं रहता है, मैं रहता ही नहीं, मैं तो कुछ और ही हो जाता हूं, तूफान है वो. तो उसका भी भय होता है, पर ये अच्छा भय है. इसकी पता चाहिए कि वो दुश्मन पुराना है पर शक्तिशाली तो है जरूर. तो उस भय का भी ज्ञान चाहिए. परंतु ये भय होना भी, ये भी एक तरह से इसको भी सेल्फ डिसेप्शन कहा हुआ है. दूसरा होता है सेल्फ जस्टिफिकेशन. एक कहा सेल्फ डिफेंस, फिर है सेल्फ जस्टिफिकेशन. बहुत सारी दलीलें पेश करना अपनी तरफ से, ये सेल्फ डिसेप्शन है. यदि किसी ने कुछ कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो हमारे पास हजार कारण है उसके, ये ऐसा इसलिए किया, पहले से तैयार है. तो ये सारी बातें जो है, इसको क्या कहा जाता है, सेल्फ डिसेप्शन. सेल्फ डिसेप्शन बहुत गहरा टॉपिक है, क्योंकि हम में से हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं खुद को धोखा दे रहा है. कोई ज्यादा दे रहा है, कोई कम दे रहा है, बस अंतर यह है. जैसे अहंकार के लिए कहते हैं, हम कभी कभी कहते हैं ना, ये व्यक्ति बहुत अहंकार है, अहंकारी है, उसमें ज्यादा है, तुम में कम है, पर है सब में, अहंकार से भरे पड़े हैं सबकी सब. इसके लिए तो निराकारी, निर्विकारी और तीसरा क्या है, निरंकारी. जबकि निरंकार, जबकि अहंकार विकार में आ जाता है, निराकारी निरंकारी में, निर्विकारी में तो आ गया ना अहंकार, काम क्रोध लोभ मोह, उसके बाद भी तीसरा स्टेटस रखा है उसको. दादी से पूछा गया था, प्रकाशमणि दादी से, ये तीसरा निरंकारिता क्या है, जबकि निर्विकारी में तो आ गया. दादी ने कहा था कि ब्राह्मण आत्मा जब बाबा की बनती है और बाबा से इतनी उपलब्धियां होती है, फिर सेवाओं में जाती है, सेवाओं में सफलता मिलती है, विस्तार होता है, विशेषताएं होती है जो पहले निखर कर बाहर निकलती है बाहर, तब ब्राह्मण आत्मा को उनका यह अहंकार चालू हो जाता है, पुराने होने का अहंकार, किसी स्थान पर रहने का अहंकार, किसी के नजदीक रहने का अहंकार, पोस्ट का अहंकार, पद का अहंकार, स्टेटस का अहंकार, मेरी बहुत बड़ी, मेरी पहुंच बहुत ज्यादा है, अपनी जड़ें बहुत मजबूत कर रखी है, हमारे हाथ बहुत लंबे, कुछ चाहिए हो तो बोल देना, टोली वेली एक फोन लगा देंगे और मिल जाएगी. ये सारे अहंकार के ही रूप है. इसके लिए तीसरा नंबर रखा हुआ है निरंकारिता. ये भी खो जाए, ये भी एक तरफ हो जाए, जैसे हम कुछ है ही नहीं. आज कहा ना ट्रस्टी, मुरली में है ना, आज ट्रस्टी होकर रहो, रखो सब कुछ पर ट्रस्टी होकर, छोड़ो नहीं. वरदान में भी कहा, नहीं तो सप्रेशन होगा, दमन होगा और खींचेगी वो चीज. धन को छोड़ दिया और धन ही याद रहता, जब तक था तब तक याद नहीं था, छोड़ने के बाद ज्यादा याद आ रहा है, और खींचती है चीजें. माइंड एकदम विचित्र है, किस तरह काम करता है उसी को समझना है, अपने मन को समझना है. मन में कौन से सूक्ष्म भय है, मन कहां कहां दिखावा करता है, अच्छा किन किन लोगों के सामने दिखावा करता है और किन किन बात में दिखावा करता है. जैसे हम अपने दोस्तों के साथ, कि जिसके साथ हम रोज जानते हैं, उनके सामने हम थोड़ा दूसरा, ऐसे ही कोई दूसरा एकदम व्यक्ति आ गया तो हमारा पूरा तेवर ही बदल जाता है, क्योंकि वहां हम उनके सामने कुछ और दिखाना चाहते हैं कि हम कोई यो बहुत बड़े महान योगी है, तपस्वी है. दिखावा, दिखावा अर्थात आत्मवंचना, हिपोक्रेसी. तो बाबा कह रहे हैं स्वयं को स्वयं के धोखे से बचाओ. और मुझे अपने अंदर किस किस बात का सूक्ष्म अहंकार है, चिंतन का, बोलने का, सेवा का, जजमेंट पावर का, हैंडलिंग का, मैनेजमेंट का, मैं हैंडल इसको बहुत अच्छा करता हूं, ये चीज मैं मैनेज अच्छा करता हूं, इनको दे दी ना इसलिए गड़बड़ हो गया सब, हमको देनी चाहिए थी, ये भी सेल्फ डिसेप्शन है। तो स्वयं को क्या करो, स्वयं के धोखे से बचाओ। तो ये एक अच्छा टॉपिक है जिसके ऊपर स्वयं हर एक को चिंतन करना है, मैं कहां सेल्फ डिसेप्शन, सेल्फ लाइंग, सेल्फ चीटिंग, सेल्फ हिपोक्रेसी, अलग अलग शब्द है ये, कहां मैं अपने आप से कहां झूठ बोल रहा हूं, हो कुछ अंदर कुछ भी ठीक नहीं है परंतु हम बाहर से कहते हैं सब ठीक चल रहा है, अंदर से पूरी गड़बड़ चालू है, ब्राह्मण जीवन अस्त व्यस्त बिखरा पड़ा है, ना अमृत वेला ढंग का है, न मुरली चिंतन हो रहा है, ना धारणा है, केवल नेमिनाथ कर रहे हैं ताकि कोई ये ना कहे अरे तुमको माया ने खा लिया, मुरली जा रहे डर के मारे, कोई ये ना कह दे कि तुम मर तो नहीं गए, वो जीवन में कोई खुशी नहीं है, जबरदस्ती का चल रहा है सब कुछ, फ्लॉगिंग द डेड हॉर्स, मरे घोड़े को जैसे चाबुक से मारा जा रहा है, चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, ना इधर के ना उधर के, छोड़ के भी नहीं जा सकते, इसमें आगे भी नहीं जा रहे, बीच में अटक गए, फंस गए त्रिशंकु की तरह उल्टे लटके हुए, ना उधर ना नीचे, पूरे विकार में भी नहीं है और निर्विकार भी नहीं है, बीच में है दुविधा में दो गई, न माया मिली न राम, माया भी नहीं और राम भी नहीं, माया के वश में भी नहीं है और राम भी नहीं मिला, बीच में ही अटक रहे, तो यह स्थिति है त्रिशंकु की। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है मैं अपने आप के साथ धोखा कर रहा हूं, मैं धोखा कर रहा हूं, ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है, मैं दिखावा कर रहा हूं सब लोगों के सामने, बाकी ये सब मुझे पसंद ही नहीं है, मेरा तो स्वभाव मौन का है। एक दूसरा धोखा ऐसा भी हो सकता है कि तोड़ निभा रहे, आसक्ति इतनी है लौकिक संबंधियों के साथ, या अलौकिक में लौकिकता ला के रखी है और वहां पे आसक्ति अबड़ा के रखी है और तोड़ भी नहीं सकते क्योंकि फिर कहेंगे अच्छा तुम तोड़ नहीं निभाते, पर हमारा स्वभाव है एकांत का, मौन का, स्वतंत्र, आत्मा को कोई भी बंधन प्रिय नहीं है, आत्मा को बंधन प्रिय नहीं है। कल की मुरली अव्यक्तवाणी परसों की, जिसमें बाबा ने ट्रिनिडाड से मुलाकात निर्बंधन की चर्चा की थी, दो कारण बताए थे, एक तो संबंध और दूसरा स्वभाव संस्कार, आत्मा फ्री हो जाए इनसे, जो ऊंची स्थिति में है वो डबल लाइट रहेंगे, डबल लाइट अर्थात फ्री अर्थात इन दो बंधनों से मुक्त। आत्मा का स्वभाव है निर्बंधन, पर कहीं ना कहीं सूक्ष्म में बंध गई अंदर ही अंदर, और वो ये दिखा रही है कि मैं स्वतंत्र हूं, सेंटर पर जा रहे हैं, मुरली कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये दिखा रहे बहुत अच्छा ब्राह्मण जीवन चल रहा है, परंतु पता है अंदर में पवित्रता भंग हो रही है, पता है अंदर में क्रोध कभी आ रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, लोभ है, अहंकार है। तो कितनी बड़ी बात बाबा ने कह दी, स्वयं को स्वयं के धोखे से बचाओ, तो स्वयं के समय के धोखे से बच जाएंगे, माया के धोखे से बच जाएंगे, और तीसरा दुख के अंश मात्र के महसूसता से बच जाएंगे। और इसके लिए एक उपाय बताए, समय को व्यर्थ नहीं गवाओ, समय का सदुपयोग करना है, वेस्ट करना व्यर्थ की बातों में, यहां क्या चल रहा है वहां क्या चल रहा है, यहां जाऊं वहां जाऊं, खाना और घूमना, ये बहुत बड़े टाइम वेस्टर्स है। जब देखो तब ना तो शोक वाटिका ना अशोक वाटिका, किस वाटिका में, शोक वाटिका में पड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ बनाना जरूरी है दिन रात, तो उसी का चिंतन है दिन रात, या तो घूमने में कहां जाऊं, ये गया वहां गया, अब ये हो गया वो जाओ, जाओ परंतु जाने का उद्देश्य केवल घूमना फिरना नहीं है, ज्ञान चिंतन है वहां जाकर, वहां की आत्माओं को शक्ति से भरना है। एक बात हमेशा याद रखना है, जो भी मधुबन निवासी यहां से बाहर जाए, एक ही लक्ष्य से जाए, आत्माओं का कल्याण करना है, आत्माओं में बल भरना है, आत्माओं को शक्ति देनी है। साइट सीइंग, घूमना फिरना, व्यर्थ की बातें, दोस्त बना के रखना यहीं पर, इसी परिवार में वो दोस्त छूट गए, यहां दोस्त बना के रखे, ये कितना बड़ा डिसेप्शन है। जबकि यहां बाबा ने कहा है तुम्हारा बाप ही सब कुछ है। तो इस आत्मवंचना से, प्रवंचना से, सेल्फ डिसेप्शन से स्वयं को मुक्त करना है। विधि है आइडेंटिफाई करो कि मैं फंस चुका हूं, मानो पहले ये, जैसे हम संसार के लोगों के लिए कहते हैं पहले मानो तुम पतित हो तब पावन बन सकोगे, पहले मानो कि तुम्हारी दुर्गति हो गई है तब सदगति होगी। यहां पर भी पहले मानो हम गिरे हैं, आज भी कहा बाबा ने कुल कलंकित करते, बाप तुम्हें सीधी बात बतलाते हैं। आज के मूल्य में एक लाइन है बीच में, बाप तुम्हें सीधी बात बतलाते हैं, घुमा फिरा के नहीं, इधर उधर से नहीं, सीधा डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट ब्लैंक, बाप तुम्हें सीधी बात। कुल कलंकित क्यों होते हो, मुंह काला क्यों करते हो, क्यों गिरते हो नीचे, तो स्वयं को बचाना है, आइडेंटिफाई करना है, मानना है, स्वीकार करना है, हां हो गया, रोना गिड़गिड़ाना भगवान के सामने, मदद करो अब, निकालो मुझे इस अंधकूप से बाहर, काल कोठरी से। जी यहां पर स्टाइफल्ड, जो कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, दब रहा है, घुट रहा है, इससे मुझे बाहर निकालो तो मदद आएगी। फिर सच्चे दिल से, जो सच्चे दिल वाले होते हैं वो बाप के फ्रेंड है, सच्चे योगी। तो सेल्फ डिसेप्शन पर काम करना है। ओम शांति।